अल्बम कर दो उसको भी पहले बात नहीं करना फिर आपने दबा कर रखा
प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी परिव्रजाचार्य श्रीमतीवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की डिस्कॉन संस्थापकाचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की समवेद भक्तवृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की ऑल ग्लोरी स्टेशन बॉडी ऑल ग्लोरी स्टेशन बॉडी ऑल ग्लोरी स्टेशन बॉडी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी टू गुरु एंड गौरांग श्री प्रभुपाद की। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद का इनका शीर्षक है भगवान कृष्ण अध्याय 24 और श्लोक संख्या नंबर 66। सभी लोग कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा। जात गत पितृग्रहान् व्रजम् एदि तत् अर्थ अत्वा रिपुन् सूतसतानि कृत उरुधार उत्पाद्य तेषु पुरुष कृत कृतुभि समीचे आत्मानम् आत्मनिगमम् प्रथयन् जनेषु। जातो गदा पितृगृहात् व्रजम् एति तार्थो जात गदा पितृगृहात् व्रजम् एति अर्थो सतानी कृतोरुद्धारः हत्वारि पुनसूत सतानी कृतोद्धार उत्पात तेषु पुरुष कृतुभि समीचे उत्पाद्य तेषु पुरुष कृतुभि समीचे आत्मानात्म निगमम् प्रथयान् जनेषु आत्मानम् आत्मनिगमम् प्रथयान् जनेषु माताजी। शब्दार्थ इस प्रकार हैं, जात वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लेकर, गता चला गया, पितृगृहात अपने पिता के घर से, व्रजम वृंदावन को, एदित अर्थ वृंदावन के पद को ऊंचा बनाने, हत्वा मारकर, रिपुन अनेक असुरों को, सुत्त शांतिनी सैकड़ों पुत्र, कृत उरुधार हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को पत्नी रूप में स्वीकार के, उत्पाद्य उत्पन्न किया, तेषु उनमें पुरुषः परम पुरुष जो मनुष्य के समान है, कृतु भी अनेक यज्ञों द्वारा, समीजे पूजा की, आत्मानम अपनी क्योंकि सभी यज्ञों में की पूजा जाती है, आत्मनिगमम वेदों के अनुष्ठानों के अनुसार, प्रथयन वैदिक नियमों का विस्तार करते हुए, जनेषु जानता जनता में, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमत एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान श्री हरि लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं, वे वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए किंतु तुरंत ही अपने पिता के घर छोड़कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारका लौट गए, जहां उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार अनेक श्रेष्ठतम स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपनी ही पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जैसे कि भगीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा कृष्ण को ही जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने आचरण से एक आदर्श स्थापित करते हुए वेदवर्णित अनेक अनुष्ठान किए और अनेक पत्नियों के साथ विवाह करके तथा उनसे संतानों उत्पन्न करके लोगों को यह दिखलाने के लिए कि वैदिक नियमों के अनुसार रह कर किस तरह सुखी बन सकते हैं, गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना की। वैदिक यज्ञ के केंद्र बिंदु कृष्ण थे, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, मनुष्य जीवन में प्रगति करने के लिए मानव समाज को भगवान कृष्ण द्वारा गृहस्थ जीवन में प्रदर्शित वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। किंतु भगवान कृष्ण के प्राकट्य का असली उद्देश्य तो यह दिखलाना था कि मनुष्य भगवान के साथ प्रेम व्यवहार में किसी तरह भाग ले सकता है। भावावेश में प्रेम व्यवहार पर भावावेश में प्रेम व्यवहार का आदान प्रदान वृंदावन ही संभव है। इसीलिए वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन में उन्होंने न केवल अपने माता पिता गोपों तथा गोपियों के प्रेम व्यवहार में भाग लिया, अपितु अनेक असुरों को मारकर उन्होंने मोक्ष प्रदान किया, जैसे कि भगवत गीता के 4:8 में कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशायस्त दुष्कृतम। भगवान भक्तों की रक्षा करने एवं असुरों का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने आचरण से इसे भली भांति दिखला दिए। भगवत में अर्जुन भगवान को पुरुषम शाश्वतम दिव्यम के रूप में समझता है। यहां भी हमें उत्पत्त तेषु पुरुषः शब्द मिलते हैं। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि परब्रह्म एक पुरुष है निराकार रूप में, तो उनके व्यक्तिगत्व का एक प्रकार है। अंततगत्व वे पुरुष हैं, वे निराकार नहीं हैं। वे न केवल पुरुष हैं अपितु लीला पुरुषोत्तम हैं और सभी पुरुषों में श्रेष्ठ। होम ज्ञान तिमीरांदस्य ज्ञानंजन शलाखिया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं दतापि स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रुग्णाथांबितं तं सजीवं साद्वैतम साद्वदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानु सुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पांचाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आज के इन श्लोकों में जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस धरातल में आकर उन्होंने प्रकट होते ही वृंदावन गए, वृंदावन से उन्होंने अपने भक्तों के साथ उन्होंने आदान प्रदान किया गोप गोपियों के साथ, और इतना ही नहीं उन्होंने असुरों को भी मार कर उनको मोक्ष दिए, और फिर वहां से द्वारिका गए। द्वारिका में उन्होंने एक ग्रस्त जीवन एक आदर्श रूप में कैसे व्यक्ति को बिताना चाहिए इसके विषय में उन्होंने शिक्षा प्रदान की है। फिर उसके पश्चात भगवान इस प्रकार अपनी लीला को संपन्न करते हुए उन्होंने कई संतानों को भी उत्पन्न किए और अपने स्वधाम निकल पड़े। तो ऐसे यहाँ पर इन श्लोकों में जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप में पूरे लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो ये इस छोटे श्लोक में ही उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का उन्होंने वर्णन कर दिया। हालांकि आगे परीक्षित महाराज पूछते हैं कि मुझे संक्षेप में नहीं, मुझे विस्तार से सुनना है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज की जिज्ञासा के बाद में सुखदेव गोस्वामी दसम स्कंद का वर्णन विस्तार से करते हैं। तो जिसमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो कि अवतारी के रूप में प्रकट हुए हैं, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी के रूप कहा जाता है, तो उन्होंने जो लीला की है तो उनके विषय में जब कहने के लिए जब सुखदेव गोस्वामी ने जब अपने गुणावली जब शुरुआत किए तो उनके मुखारविंद को वो बोलते ही गए कि उनके दसम स्कंद के चार भाग होंगे। केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में अगर देखा जाए तो दसम स्कंद का चार भाग है, बाकी अन्य भगवान के अवतार के विषय में देखा जाए तो उसको सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप में कहा है, इतने विस्तार से नहीं कहा। तो इससे पता लगता है कि सारे अवतारों में जो मुख्य जो अवतार हैं वो है कृष्ण स्वयं। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण जब इस धरातल पर आते हैं तो उन्होंने अपने भक्तों के साथ अनेक अनेक रसास्वादन किए। हालांकि भगवान के जितने भी अवतार है उस अवतारों में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब भगवान कृष्ण जब स्वयं आए तो उन भगवान ने स्वयं अपनी इस अवतारी में उन्होंने कई प्रकार के रस को प्राप्त किए। ऐसे वर्णन आता है कि भगवान जब नरसिंह के रूप में जब आए थे तब उस समय प्रह्लाद की रक्षा किए और प्रह्लाद की रक्षा करने के पश्चात जब प्रह्लाद महाराज जब वरमाला लेकर उनके पास जाकर उनको जब शांत प्रदान किए तब उस समय नरसिंह भगवान उनको प्रेम जताने के लिए स्वयं उनको अपने गोद में बिठाकर उनको अपने वात्सल्य रस को, एक पिता किस प्रकार अपने बच्चे को प्रेम करता है, जैसे कि एक शेर अपने बच्चे से कैसे प्रेम करता है, कैसे चाट कर करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भगवान नरसिंह प्रहलाद को चाटने लगे। तो किसी आचार्यगण ये भी कहते हैं कि इसलिए चाट रहे थे क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बहुत कष्ट दिया प्रहलाद को, तो कहीं उनके शरीर में कुछ चोट तो नहीं आ गई, तो चोट को वो चोट के जख्म को भरने के लिए भगवान नरसिंह उनको चाट रहे हैं। और इस तरह जब उन्होंने उनसे जब प्रेम का जब आदान प्रदान किया तो उन्होंने क्या देखा, उनको ये दृश्य दिखाई पड़ा कि प्रह्लाद को मुझसे ज्यादा आनंद आ रहा है, प्रह्लाद लाद दाई ने, तो प्रह्लाद को अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है। तो भगवान नरसिंह सोचे, भगवान ने ये सोचा कि शायद पुत्र बनने में ज्यादा सुख मिलता है, पिता में इतना सुख नहीं मिलता है। अब भगवान कौन है, रसराज है, समस्त रसों का राजा है, तो भगवान भी विचार में पड़ गए कि मैं रसों का राजा होने के बाद भी मुझसे ज्यादा अधिक रस इसको क्यों मिल रहा है, तो वो विचार करने लगे शायद पुत्र बनने में ज्यादा रस मिलता है। अब मेरा तो इस जन्म में तो पुत्र मैं पिता कोई है नहीं, वो खंबा से निकले, तो खंबा से मैं कैसे, खंबा ही तो उनका पिता हुआ, तो कैसे वो प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। तो उन्होंने त्रेता युग में, वही सतयुग के बाद त्रेता युग में वही भगवान प्रभु रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए, दशरथ नंदन के रूप में जाते हैं। तो जब उन्होंने इस प्रकार वात्सल्य रस का तो आस्वादन किए और साथ ही साथ उन्होंने अपने मित्रों के साथ, जो कि जितने भी उनके मित्र थे वो सभी लोग ऐश्वर्य रूप से उनके मित्र के रूप में थे, ऐश्वर्य प्रधान था और मित्रता थी, साक्य रस था मगर ऐश्वर्य प्रधान था। तो प्रभु रामचंद्र जी के मन में यह जिज्ञासा हुआ कि मुझे ऐसा मित्र चाहिए जो मुझे मेरे कंधे पे चढ़े, मेरे कंधे पे हाथ रखे, या मुझे इस भगवान की भावना से ना पूजे। क्योंकि जितने भी उनके सेवक थे, दास इत्यादि, हनुमान इत्यादि, सभी लोग दास के भावनाओं को ज्यादा प्रधान दिए। तो उन्हें ऐसा एक रस प्राप्त करना था और साथ ही साथ में उन्हें एक पत्नी नहीं, बहु पत्नी की आवश्यकता, रस को प्राप्त करना था। तो यहां पर प्रभु रामचंद्र जी स्वकीय रस का प्रसास्वादन कर रहे थे, यानी कि विवाह के अंतर्गत का जो संबंध है वो आस्वादन कर रहे थे। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने सोचा कि केवल विवाह के अंदर नहीं, विवाह के बाहर का भी एक चक्कर रहना चाहिए, तो उसमें ज्यादा रस मिलेगा। तो जैसे आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोच्च वस्तु है, भौतिक जगत में सबसे निम्न माना जाता है, सबसे निंदनीय माना जाता है। तो यहां पर क्योंकि यह भौतिक जगत क्या परछाई है, परछाई हमेशा विपरीत दिखता है, उल्टा दिखता है। तो यहां पर इस कार्य को निंदनीय कहा जाएगा, एक घर वाली एक बाहर वाली बोलेंगे तो निंदनीय माना जाएगा। लेकिन भगवान को इसका रस प्राप्त करना था, तो भगवान ने सोचा कि मैं एक ऐसा भी एक संबंध रखूं जिसमें मेरा उसके साथ विवाह का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मेरा उनके साथ प्रेम का मधुर संबंध होगा। तो ऐसे सोचकर वही प्रभु रामचंद्र जी भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो जब भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो उन्होंने ये संपूर्ण रस का रसास्वादन किया, स्वकीय परकीय, और उनके जितने भी मित्र थे वो उनको कभी भगवान के रूप में मानते ही नहीं थे। ये ब्रजवासी कोई भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं पूछते। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भी वृंदावन में संकट वगैरह आता है तो सभी लोग कृष्ण की तरफ क्यों दौड़ लगाते थे? क्योंकि ब्रजवासियों ने यह सुन रखा था, जब कृष्ण के जब जन्म कुंडली जब निकाला गया तब उन्होंने यह सुन रखा था कि जब कभी भी ब्रज में कोई भी संकट आएगा तो सारे संकट को तारने वाला ये लड़का होगा जिसका नाम है कृष्ण। तो वो खबर उनको सबको था और वो खबर रखकर सभी लोग कृष्ण कृष्ण के नाम को उच्चारण करके उनसे रक्षा के लिए दौड़ते थे। सभी लोग भगवान मानकर नहीं, ये मानकर कि उनके पास ये सामर्थ्य है कि वह हमें संकट बचा सकते हैं। तो ये भगवान की ये अद्भुत उनके जन्म कुंडली का ये लक्षण पढ़कर ब्रजवासियों के हृदय में इस प्रकार भगवान के प्रति वो समर्पण भाव था। एक वापी में एक जैन व्यक्ति आया था तो आकर बता रहा था कि प्रभु जी हमने तीन लोगों का जन्म कुंडली निकाला। जैन था इतना, ये तो ज्योतिष भी था। उन्होंने कहा तीन लोगों का जन्म कुंडली निकाला, प्रभु रामचंद्र जी, कृष्ण और बुद्ध, तीनों का जन्म कुंडली एक ही आ रहा है और बता रहे कि तीनों भी भगवान है और सबका अब मैं पूरी तरह कंफर्म हो गया कि कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो इस तरह केवल उनके जन्म कुंडली से ही व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान कौन है। तो इस प्रकार यहां पर भगवान ने वृंदावन में जाकर इस परकीय रस को रसास्वादन किए। तो यहां पर भगवान ने जैसे वहां से बिछड़कर विप्रलंब का भी रसास्वादन किए। तो जैसे इसलिए गोपीगण बताते हैं कि अपने गोपी गीत में बताते हैं कि भगवान ने वृंदावन में आकर वृंदावन की शोभा बढ़ा दी। तो वृंदावन की महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण वहां पर अपने भक्तों के साथ अद्भुत लीलाओं का रसास्वादन किए। इसलिए वृंदावन इतना श्रेष्ठ माना गया है, जहां पर भगवान कृष्ण वहां पर अनेक अनेक लीलाओं को संपन्न किया। अब वृंदावन में भी सर्वश्रेष्ठ जो लीला जो है, अधिकतर जो बाहर वाले भी उत्सुक रहते हैं सुनने के लिए, और वो है रासलीला। कुछ लोग भगवान की महिमा को न जानते हुए कभी कभी उनका भगवान का ही नकल करने लगते हैं, तो कभी कभी उन लोग भी ऐसे, बहुत से ऐसे गुरु है जो स्वयं कहते कि मैं भगवान हूं, धीरे धीरे कहते मैं कृष्ण हूं, धीरे धीरे सर पर मोर मुकुट रखते, धीरे धीरे बांसुरी रखते, फिर धीरे धीरे गोपियां भी आ जाती है, फिर चालू हो जाता है रासलीला। तो ऐसे जो लोग हैं जो भगवान के साथ स्पर्धा करते हुए ये नहीं समझ पाते कि भगवान की रासलीला और हमारे में क्या अंतर है। कमलोचन प्रभु बता रहे थे कि भौतिक जगत जो तथाकथित जो लीला है वो रासलीला नहीं, और रासलीला है। और वास्तविक कृष्ण ने जो लीला की वो है रासलीला, जिसको लेकर हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहां पर भगवान को कहा गया है निगम प्रधान, जाने कि उन्होंने जो भी कुछ कार्य किए उस कार्य में उन्होंने वेदों का प्राधान्य, यानी कि वेदों के नियमों का विस्तार करते हुए, यानी कि वेदों का नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। भगवान ने कभी भी शास्त्रों में दिए हुए जो नियम है उसका उन्होंने कभी तोड़ा नहीं। तो प्रश्न ये उठता है, तो वो कहां वो नियम जिस समय करण अकेले था और वो अपने रथ से उतरकर अपने रथ के चक्का को जब निकाल रहा था, उसी समय कृष्ण ने उनको आदेश दिया करण का वध करो, ये कौन सा नियम है? एक क्षत्रिय को बिना अस्त्र शस्त्र रहते हुए, उनके हाथों में बिना अस्त्र शस्त्र हुए, वो निरस्त्र, कोई उसके हाथ में अस्त्र नहीं है, वैसे समय पर उनका वध किया। इतना ही नहीं, वही भगवान ने, कृष्ण ने भीम को आदेश दिया कि दुर्योधन की जंगा को तोड़ो, उन्होंने ही तो इशारा किया। तो ये कौन सा है भगवान का वास्तविक नियम? तो लोग वही कहते हैं कि वही भगवान ने आदेश दिया युधिष्ठिर को कि झूठ बोलो, अश्वत्थामा हाता। तो भगवान कौन है? जो कुछ भी करते वही वास्तविक में शास्त्र है। कृष्ण जो कुछ करते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं कह सकते। जैसे युधिष्ठिर महाराज अपने जीवन में इतने एकनिष्ठ थे सत्य बोलने में कि चारों दिशाओं पर उनके सत्यता की डंगा बजती थी, वैसे युधिष्ठिर वो जब रथ पर आरूढ़ भी होते थे तो उनका रथ जो था वो जमीन से एक इंच ऊपर चलता था, इतने सत्य बोलते थे। लेकिन वही भगवान कृष्ण ने उनको, युधिष्ठिर महाराज को कहा, कहो अश्वत्थामा हाता। युधिष्ठिर महाराज विचार में पड़ गए, मैं कैसे बोलूंगा? पंच पांडवों की तरफ देखकर कहा, कहो अश्वत्थामा हाता। भीम समझ गए क्या करना, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया, ऐसे बोलिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये सोच नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे कहूं। और इतने में भीम ने जाकर हाथ एक गदा लिया और अश्वत्था नामक एक पशु था, एक हाथी, उसके मस्तक पर ऐसे जोर से प्रहार किया कि हाथी मर पड़ा। और भीम जो कि 10,000 हाथी का बल है, एक हाथी मारने में क्या है उनके लिए, कुछ नहीं है। अब जैसे ये खबर मिला तो भीम ने जोर से चिल्लाने लग गया, अश्वत्थामा हाता, अश्वत्थामा हाता, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अब जब द्रोणाचार्य ने सुना तो द्रोणाचार्य की तो आदि शक्ति खत्म ही हो गई युद्ध करने, फिर द्रोणाचार्य को फिर भी पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें पता था कि रणभूमि में एक ही व्यक्ति सत्य बोलता, वो युधिष्ठिर महाराज, और उन्होंने कहा मेरे रथ को युधिष्ठिर महाराज के पास ले चलो। तो उनके रथ को युधिष्ठिर महाराज के पास लेकर गए और जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा क्या ये सत्य है अश्वत्थामा हता, तो अब युधिष्ठिर महाराज धर्म संकट में और द्रोणाचार्य के ठीक पीछे कृष्ण कह रहे। अब यहां पर युधिष्ठिर महाराज तब उन्होंने देखा कि अब स्थिति बड़ा गंभीर है तो उन्होंने कह दिया, क्या कहा अश्वत्थामा, तो उन्होंने सोचा झूठ तो नहीं बोलूंगा, तो फिर वो आगे उन्होंने ऐड किया नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया है लेकिन मनुष्य मरा है क्या पशु मरा वो डाउट है, दोनों में से एक मरा है। तो उन्होंने ये जब कहा क्योंकि वो सोच रहे थे मैं सत्य का सत्य बोलने में मैं बड़ा एकनिष्ठ हूं, भले कृष्ण ने झूठ बोलने बोला लेकिन मैं नहीं बोलूंगा मैं सत्य बोलूंगा। अश्वत्थामा हाता आगे जब उन्होंने कहा नरोवा कुंजरोवा, तो भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख जोर से बजाया कि द्रोणाचार्य को आगे सुनाई नहीं दिया कि क्या बोला। अब जैसे उन्होंने ये कहा अश्वत्थामा हाता, द्रोणाचार्य पूरा अपना जीने की सारी इच्छा खत्म कर दिया, सारे अस्त्र शस्त्र को रणभूमि में छोड़कर केवल बीचों बीच वो समाधि में बैठ गए, क्योंकि उसी समय कुछ सप्त ऋषि वगैरह वो आकाश वायुमंडल में आकर उनको फटकार रहे थे, भर्षण कर रहे थे कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने अपने अस्त्र शस्त्र को कमजोर व्यक्ति के ऊपर उपयोग किया। ये जब सुना तो उनकी सारी इच्छा खत्म हो गई और वो समाधि के लिए बैठे और इस प्रकार दृष्टद्युम्न के द्वारा उनके गर्दन काट दिए गए। तो ऐसे वो यहां पर युधिष्ठिर महाराज ने जब ये सोचा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा सच बोलूंगा, उसी समय युधिष्ठिर महाराज का जो रथ जो था वो जमीन पर आकर गिर पड़ा धड़ाम। अब प्रश्न यह होता है कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ तो नहीं बोला था, फिर रथ क्यों जमीन पर आकर स्पर्श किया? तो आचार्यगण ये टीका लिखते हैं क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण ने कहा तो उन्होंने कृष्ण की बात पर संशय किया, कृष्ण ने कहा कि उनको झूठ बोलो लेकिन कृष्ण के वाणी के झूठ को बोलने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने नहीं बोला तो उनकी सत्यता भी तथाकथित झूठ के समान मानी जाती और वो सीधा रथ उनका जमीन पर गिर पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने कुछ भी कहा वही सत्य है, वही भगवान वक्ता कर्ता अभिरक्षिता धर्म के सारे जो संचालन करने वाले वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो कृष्ण वो जब कुछ भी करते हैं तो उनके ऊपर वेदों का नियम नहीं चल सकता, इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में जहां पर वर्णन करते हैं कि भगवान किस प्रकार है उस प्रकार है, यथा क्रीडोपशकरणम, जिस प्रकार बच्चे लोग खेलने के लिए आते हैं तो खेलने के लिए आते तो सारे अपने खेलने के सारे सारे सामान लेकर आते, अब उसके अंदर जो मुख्य जो लड़का जो था उसका सारा, जैसे कि मान लो उदाहरण ले लिया जाए क्रिकेट को, अब एक जो व्यक्ति है उसका स्टंप है बॉल है बैट है सब है, अब वो लोग सब लोग खेलने के लिए आए सारे बच्चे लोग, और उसमें अगर ये आउट भी हो गया तो भी ये बोलेगा नहीं मैं आउट नहीं है, बोले नहीं नहीं आउट है ठीक है स्टंप उठाया बैट उठाया बॉल चल मैं चला, तो फिर खेल खत्म, क्यों? क्योंकि उसी का स्टंप बॉल है, कौन उसको बोल सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसी प्रकार भगवान की पूरी सृष्टि है तो भगवान के ऊपर कौन आरोप लगा सकता है या उसके ऊपर कौन लांछन लगा सकता है कि आप वेदों के नियम कार्य कर रहे हो, नहीं। तो वैसे भगवान जब उन्होंने रास लीला भी खेले तो भी वो उसके अंदर कई प्रकार के वेदों के अनुसार भी देखा जाए तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। श्रील प्रभुपाद भगवान की रास लीलाओं में वो 10 पॉइंट वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान की रास लीला जो थी वो गलत नहीं थी। वो सही था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उसके अंतर्गत वर्णन करते हैं। तो पहले बताते हैं कि कैसे भगवान का रासलीला सही था गलत नहीं था, उसमें कोई भौतिक काम विकार नहीं था, वो पूरी तरह आध्यात्मिक रासलीला था। तो पहला पॉइंट बताते कि भगवान कृष्ण ने जब रासलीला शुरू किए तो कुछ 8 साल के समय थे, तब से 8 साल के बालक के समय पर। अब उस समय उनकी जो उनके साथ जो गोपियां जब रासलीला खेलने आते थे तो सब 6 साल की बालिका थी। अब ये 8 साल के बालक पुत्र या कोई बालक है तो उसके साथ अगर कोई 6 साल की बालिका अगर खेल भी रही है तो किसी माता पिता को ज्यादा हैरानी या परेशानी नहीं होगी कि अरे ये खेल रहे अकेले, कोई टेंशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाल अवस्था है, बाल अवस्था में काम विकार की समझदारी तो रहती नहीं है। तो ऐसी ये पहला रीजन है जिससे ये समझ सकते हैं कि ये कोई भौतिक काम विकार नहीं है या रासलीला नहीं है। फिर दूसरा तो कि भगवान को कहते आप्त काम, आप्त काम यानी कि वो जो इच्छा करते वो अपने आप पूरा हो जाता है। जैसे कि अगर हमें हमारी अगर हमें प्यास लगा है तो हमें पानी पीने की इच्छा है तो हम पानी लेकर पीना पड़ता है तब जाकर हमारा प्यास मिटता है। लेकिन भगवान केवल स्मरण करने मात्र से सब हो जाता है। केवल भगवान ने स्मरण किया कि मैं संतान को उत्पन्न करूं तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, उन्हें कोई अन्य पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं पड़ी या उन्हें कोई विवाह के विधि को करना नहीं पड़ा। केवल स्मरण किए ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी से सृष्टि बना दिया। तो केवल उनके इसलिए उनको कहा गया आप्त काम। जैसे कि नर नारायण ऋषि ने हिमालय में इतने तपस्या किए तो उनकी तपस्या देखकर इंद्र भी घबरा गया, क्योंकि इंद्र हमेशा घबरा जाते जब भी कोई तपस्या करते हैं। तो इंद्र का धड़कन जोर से बजने लगा कि अरे तो मेरा पोस्ट चला जाएगा। तो इंद्र ने क्या किए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने अप्सराओं को भेजा और बहुत सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा और यहाँ पर जैसे रंभा इत्यादि को, तो ये तमाम प्रकार की सुंदर अप्सराएं आई उनको भंग करने, लेकिन नरनारायण ऋषि की तपस्या भंग नहीं हुई। जबकि तपस्या पूरा होने के बाद नरनारायण ऋषि ने उन्होंने ही अपनी जंगा को मंथन कर एक और एक सुंदर अप्सरा को उत्पन्न किया, जो कि जंगा को कहते उर को उनको मंथन किया तो उसमें से बन गया उर्वशी, जो कि रंभा से भी कई ज्यादा सुंदर थी। तो यहाँ पर नर नारायण ऋषि ने उर्वशी को उत्पन्न करके इंद्र को गिफ्ट दिया, बोला कि मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। और इंद्र भी चकित पड़ गया, रे मेरे स्वर्ग में भी इतनी सुंदर नहीं है जो कि इनके पास है। तो वैसे भगवान जो कि आप्त काम है उन्हें किसी अन्य वस्तु पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तीसरा पॉइंट बताते हैं कि भगवान जैसे प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि भगवान यदुवंश के यदुपति, अभी यदुवंश के जितने भी लोग हैं उनके इसमें कोई भी एक व्यक्ति का स्त्री के प्रति गलत कैरेक्टर नहीं था, सभी लोग स्पॉटलेस पर एकदम व्यक्ति थे। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि कृष्ण भी कोई गलत रासलीला कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं, जो चौथा पॉइंट वर्णन करते हैं प्रभुपाद कि भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त हैं वो अपने भक्ति के बल से ये सारे वस्तुओं को परित्याग कर देते। जैसे अर्जुन गए थे स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में जहां पर उर्वशी जो कि यहां से उत्पन्न हुई है नर नारायण ऋषि के द्वारा, जो कि जिसको देख के इंद्र भी मोहित हो जाता है, और वो उर्वशी आई थी अपने प्रस्ताव को लेकर अर्जुन के पास, अर्जुन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहने लगे माता जी। अब वो आई थी अपने प्रस्ताव को लेकर और इन्होंने कह दिया हाथ जोड़ के माता जी, तो फिर बड़ा गड़बड़ हो गया, बड़ी क्रोधित हो गई कि मेरा इंसल्ट किया। कभी कभी भौतिक जगत में भी ऐसे किसी एक एक कॉलेज की लड़की आई थी एक भगवत गीता लेने के लिए, तो ब्रह्मचारी था, तो वो मरीन लाइन्स में जहां पर वितरण कर रहा था, तो कॉलेज की लड़की ने पूछा ये कितने का है भगवत गीता, तो उन्होंने कहा 60 रुपया माता जी। माता जी व्हाट, मैं बूढ़ी लगती हूँ, भूख पटक के चले गए वो भी दे लिया। तो ऐसे ही उर्वशी को भी क्रोध आ गया, माता जी बोल रहे हो, तो उर्वशी ने तो उनको श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक बन जाओ, 1 वर्ष तक तुम नपुंसक बन जाओ। तो उन्होंने भौतिक जगत में आके बृहत नला का रोल करते हुए उन्होंने वो श्राप को पूर्ण किया, ओ हालांकि वो श्राप उनके लिए आशीर्वादी हो गया। यहां पर अर्जुन जो कि भगवान की भक्ति के बल से उन्होंने ऐसे तथाकथित जो वासनाओं को परित्याग कर दिए, उनको तिरस्कृत किए, तो वैसे भगवान जिनकी भक्ति कर वही भगवान भला ऐसे वस्तु के कैसे शिकार हो सकते हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं सुव्रत, सुव्रत यानी कि जो अपने व्रत में एकदम दृढ़ है। तो वही सुखदेव गोस्वामी जब मां के गर्भ में थे तो 14 साल तक जन्म ही नहीं लिए, तो भगवान स्वयं आना पड़ा और उनको कहा कि आप जन्म लीजिए, तुम्हें माया नहीं स्पर्श करेगी, मैं हूं, ये मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तो उनकी बात को सुनकर आश्वासन हो दिए तब उन्होंने जन्म लिए, और जब प्रकट हुए अपनी इच्छा से प्रकट हुए, प्रकट होते वो सीधे चल पड़े जंगल की ओर, और यहाँ पर वेद व्यास जी पीछे भाग रहे, अरे आज ही आपका हैप्पी बर्थडे, आज ही संन्यास दे, और वैसे वेद व्यास जी पीछे भाग रहे हैं। उन्हें कोई हिस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस दिन बर्थडे जिस दिन उसका जन्म हुआ है उसी दिन उन्होंने संन्यास लिया है, और ना ही शायद भविष्य में कोई होगा सुखदेव गोस्वामी जैसे। हाँ जन्मदिन और मरण दिन होता है एक दिन, लेकिन संन्यास दिन नहीं दिखता है। और इतने एक निष्ठ वैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान की रासलीलाओं का वर्णन करते हैं, तो भला एक ऐसे भौतिक हो सकता है, प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कि बताया जाता है कि एक बार सुखदेव गोस्वामी जनकपुर में आए थे मिथिला देश में, तो उनको जनक महाराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको देखा तक नहीं, और वो सीधे मिथिला देश के नगर के बाउंड्री के यहाँ पर केवल बैठे रहे, और कोई उसको पूछा नहीं, 3 दिन तक भूखे रहे, कोई पूछा नहीं। फिर 3 दिन के बाद जनक महाराज ने उनको स्वागत करने के लिए पालकी मोर चामर सब लेकर आए, और सभी लोग उनको खूब उनको आरती वगैरह उतार कर पालकी में बिठाए, खूब उसका सम्मान करते हुए महल तक लाए। जनक महाराज एक बात नोटिस कर रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी के मन में थोड़ा भी ये अभिमान नहीं आया कि मेरा सम्मान हो रहा है। और इतना ही नहीं, उसके 3 दिन भूखे रहने के बाद उनके सामने 56 भोग रख दिया गया, और 56 भोग रखने के बाद भी उन्होंने कभी गलती से अपने जैसे कि भूखे रहने से एकादशी के बाद जब द्वादशी के सामने जब प्रसाद आता है तो व्यक्ति के मुंह से स्वयं अपने आप पानी आ जाता है, लेकिन पानी तक नहीं आया। जनक महाराज नोटिस कर रहे थे इतने गहराई से। और इतना ही नहीं, उन्होंने जनक महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के हाथ में दूध का प्याला दिया और कहा कि पूरे महल में चक्कर लगाओ। अब उनके पूरे महल में अनेक अनेक जितने भी नृत्य करने वाले जितने भी स्त्रियां थी अब वो वहां पर नृत्य कर रहे थे, और उनके वस्त्र का भी ठिकाना नहीं था। लेकिन इतना होने के बाद भी उनके हाथ में जो दूध जो था उस दूध में एक भी स्प्रिंकल नहीं आया, एक भी लहरे या एक भी तरंगे नहीं आई, पूरा दूध एकदम स्थिर था। और जनक महाराज समझ गए ये साधारण नहीं है, सुव्रतय है। और इस वैसे सुखदेव गोस्वामी भला उनको अगर चर्चा करना है तो ऐसे, अगर ये भौतिक होता रासलीला तो इनकी क्यों चर्चा करते, क्योंकि ये पूरी तरह आध्यात्मिक है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने इसकी चर्चा की। फिर पांचवा कारण बताते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई नाम जप करेगा, केवल कृष्ण का नाम लेने मात्र से वो सारे ऐसे प्रकार के विकारों को वो पूरी तरह अपने जीवन से त्याग सकता है और वही काम प्रेम में बदल सकता है केवल भगवान का हरि नाम जप करके। जैसे माफिया गैंग में एक व्यक्ति था माफिया गैंग का, और उसमें वो लीडर था, 21 साल का लड़का था, 16-17 साल में उन्होंने कई मर्डर कर दिए थे, कई लूटमार इत्यादि, उनका वही पेशा था, वांटेड था। अब पुलिस लोग उसके पीछे लगी थी और ये पुलिस से बचने के लिए भागते भागते ऐसे भक्तों का कुछ संकीर्तन चल रहा था उसमें जुड़ गया, और वो भी हरे कृष्णा करते हुए उसमें चला गया, और जब चला गया तो उन्होंने देखा, अरे ये आया, तो इन्होंने भी सोचा कि यहाँ पर छुपना अच्छा रास्ता, तो उन्होंने भी सर वगैरह मुंडा दिया, तिलक वगैरह लगा दिया। तो ये सब करने से थोड़ा हुलिया बदल जाता है, तो उसका हुलिया बदल गया, तो सोचा बस अब मैं छुप गया। और उसी में वो कुछ 6-7 महीना करीब 1 साल तक कुछ जप किए, जप करने के बाद उसके मन के अंदर ग्लानी होने लगी, मैंने बहुत सारा पिछला जन्म बहुत, क्योंकि भागवतम इतना क्लास सुन लिया था, ये करने से ये अब नरक मिलता है, वो नरक मिलता है, तो ये सारे नरकों का वर्णन सुन के वो घबरा गया था कि मेरा भविष्य नरक में जाने वाला है। तो उन्होंने प्रेसिडेंट को जाकर पूरा असलियत बताया, प्रेसिडेंट ने कहा ये तो बड़ा गलती किया तुम्हें, तो पुलिस को बता देना चाहिए। तो पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन आया, पुलिस स्टेशन में उसको जेल में डाल दिया। फिर दूसरे दिन जब कोर्ट में लाया गया तो कोर्ट में जज ने पूछा कि अब क्या करते हो, उन्होंने सब साफ बता दिया कि मैं ऐसे गुनहगार हूँ। और जज ने कहा कि अरे तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कहाँ से आया। तब उन्होंने कहा केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। तो वैसे महामंत्र में शक्ति है, जिस मंत्र को जप करने से व्यक्ति का सारा कलमश दूर होता है, वैसे कृष्ण भला ऐसे कलमश रासलीला में क्यों जाएंगे। वो भगवान जो कि अब सातवां पॉइंट बताते हैं, छठा पॉइंट सातवां, तो बताते हैं कि भगवान जो कि नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते, जैसे भगवत गीता में कहा गया 3rd अध्याय के 22वें श्लोक में, नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है इस संसार में, तीनों लोक में। फिर उसके बाद वाले में कहते यदि ही हम न वर्ते हम जातु कर्मणि अतेन्द्रिया मम वर्तमानु वर्तन्ते मानुषा पार्थ सर्वसा, अगर मैं ठीक से कर्म नहीं करूंगा तो लोग मेरा नकल करेंगे और वो लोग भी गलत काम करेंगे, इसीलिए मैं अपने कार्यों को ठीक से करता हूं। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि मैं धर्म का पालक हूं, तो ऐसे अधर्म कार्य क्यों करते हैं। तो उसी के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान कभी कभी नियमों को तोड़ देते हैं। जैसे भगवान ने अपना नियम तोड़ा और भीष्म पितामह को संतुष्ट किया। भीष्म पितामह का नियम था कि मैं 5 पांडवों को मारूंगा, लेकिन वो नियम को हटा दिया भगवान ने पांड लेकर। फिर कृष्ण ने कहा, तब भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण का वचन मैं तोड़ूंगा। अब कृष्ण का वचन था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह ने उनके भी वचन को तोड़ दिए। और भगवान ने पितामह का वचन ये था कि मैं कृष्ण का वचन तोड़ूंगा, तो उनके वचन को रखने के लिए कृष्ण ने भी अपना वचन तोड़ दिया, पितामह को संतुष्ट किए। तो उन्होंने चक्र क्यों उठाया, इसीलिए। तो ऐसे भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कभी कभी गोपियों का वस्त्र चुराए, तो कभी जो कि दूसरे के घर पर घुसकर माखन चुराए, जो कि घर पर चोरी करना मतलब वेदों के निषेध माना गया, मगर किए हैं, क्यों, भक्तों को प्रसन्न करना। फिर आठवां है, भगवान ने दंडकार्य ऋषि जब प्रभु रामचंद्र जी के रूप में आए तो दंडकार्य ऋषि को उन्होंने आश्वासन दिए थे कि मैं इस जन्म में तो एक व्रत हूं, आने वाले समय पर तुम गोपियों के रूप में आना तब मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। और इसीलिए भगवान ने उनको द्वापर युग में उनको गोपियों के रूप में स्वीकारे। तो ये दंडकार्य ऋषि थे जो कि गोपियों के रूप में आए। फिर भगवान, फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं कि वैसे भगवान जिन्होंने रास लीला खेला, जो कि भगवान का जो शरीर जो है दिव्य है, और जितने भी गोपीगण थे ये सारे गोपीगण जब रासलीला खेलने आए थे तो उनका जो देह था वो घर पर ही था। तो यहाँ रासलीला खेलने के लिए कौन कौन आया था? उन वो आध्यात्मिक देह था जिस आध्यात्मिक देह के साथ उन्होंने रासलीला खेला। फिर प्रभुपाद ये भी वर्णन करते हैं कि वही भगवान जो कि परमात्मा के रूप में है, शिरोदक्षाय विष्णु, तो वही शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हृदय में उपस्थित है। लेकिन वैसे जब हृदय में उपस्थित है वही भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर जब रासलीला खेल रहे तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? जैसे एक बार राधा गोविंद महाराज को किसी ने प्रश्न किया कि महाराज वो तो इतने सारे स्त्रियों के साथ रासलीला खेला, वो कैसे भगवान हो सकता? तो महाराज ने कहा उसमें से कोई तुम्हारी माँ बहन थी क्या? तो क्या नहीं तो प्रॉब्लम क्यों है तुम्हें? तो लोगों को फिर भी उसमें समस्या है। तो ऐसे आगे बताते हैं कि वही भगवान भगवत गीता में कहते पृथ्वी जल अग्नि वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति मष्टता। वो भगवान की भिन्न शक्ति है, भगवान कहती मेरी शक्ति है, तो भगवान के ही शक्ति है जो कि पंचभूत से बना हुआ शरीर है। तो ये शरीर भी किसका हुआ? उसी की संपत्ति हुई, तो उसी का ही प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह भगवान प्रभुपाद अंत में बताते कि भगवान ने रासलीला इसलिए खेला क्योंकि कई लोग को रोमांटिक लीला सुनने की बहुत इच्छा है, तो वो रोमांटिक लीलाओं को जो कि भौतिक जो तथाकथित जो रोमांटिक वस्तु है या मधुर जो संबंध है उसको सुनने से व्यक्ति का मन और दूषित होगा। तो सुनना ही है तो वो कृष्ण लीला को सुनना चाहिए जिसमें उसका चित्त भी शुद्ध होगा और मन की आकांक्षा भी पूरी होगी। तो वैसे भगवान उन्होंने इस प्रकार लीला खेले। उसमें उन्होंने प्रभुपाद ने एक और एक पॉइंट वर्णन किए कि जब भगवान जब ब्रह्मा जी आए थे, भगवान जब उस समय अपने गोपियों गोपों के साथ जब प्रसाद ले रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी आए थे परखने के लिए यही भगवान है क्या। तो सबको खबर है कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला में कैसे उन्होंने गोपों को चुरा लिया और गैयों को चुरा लिया। तब उसी समय भगवान ने अपने आप को विस्तार किया गोपों के रूप में, और उसी एक साल के अंतर्गत में यहां पर कृष्ण ने अन्य गोपियों के साथ उनका विवाह हो गया। तो जितने भी गोप के माता पिता थे उन्होंने शादी करवा दिए थे अन्य गोपियों के साथ। अब यहां पर शादी किसका किसके साथ हुआ? तो कृष्ण ने ही अपने आप को विस्तार किया, तो कृष्ण का ही शादी हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए शास्त्र की दृष्टि से जितनी भी पत्नी थी वो कृष्ण की थी। तो ऐसे भगवान ने जो किसी भी प्रकार की उन्होंने जो भी कुछ लीला किया है उसका एक, इसलिए यहां पर कहा गया है प्रधान यानी कि वो शास्त्र के अनुसार ही उन्होंने कार्य किए। हरे कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ प्रभु जी। नरसिंह भगवान जब ऊपर जन्म लिए तब ने नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ सतयुग में। हाँ हाँ है अच्छा अच्छा प्रभु जी का प्रश्न है कि जब भगवान रामचंद्र जी के प्रकट होने के पहले नरसिंह जब थे तब समय रामचंद्र जी तो अपने अयोध्या धाम में तो नित्य काल से उपस्थित ही है, वो तो है, लेकिन जब भगवान इस धरातल में आते हैं तो लीला को पूर्ण करते हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत में आकर रसास्वादन करते हैं, जो कि आध्यात्मिक धाम में भी नहीं मिलता है वो रस जो कि यहां मिलता है। तो जैसे भौतिक जगत में बहुत सारे, जैसे कि अभी परकीय रस है तो वो भगवान कृष्ण ने यहां पर आकर संपन्न किए, क्योंकि कृष्ण और राधा रानी के बीच में दीवार जब होगा तब विप्रलंब का रस मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक धाम में कहां मिलेगा। वही भगवान प्रभु रामचंद्र जी के रूप में यहां पर आए तो यहां पर आकर उन्होंने वीर्य रस का भी रसास्वादन किया, असुरों को भी मारे, लेकिन आध्यात्मिक धाम नहीं है। तो वो भगवान ने इच्छा ये किया कि वह पुत्र के रूप में जन्म लूं ताकि पिता के रस को रसास्वादन करूं, केवल इतना ही नहीं और भी रस को रसास्वादन करना था। तो उन्हें मित्रों का भी रस लेना था, पत्नी का भी रस लेना था, तो भौतिक जगत में लेना चाहते थे, भौतिक जगत में आकर वो रस लेना चाहते थे, इसलिए वो प्रभु रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में अंतर है। सनातन गोस्वामी बात कहीं पर वर्णन करते हैं कि भौतिक जगत में भगवान लीला करते उसकी तुलना इस प्रकार किया गया है कि जो आध्यात्मिक धाम में भगवान लीला करते तो क्या है, रत्न, जो कि सोने के बीच में रत्न, सोने के बीच में रत्न, ये एक है। अब भौतिक जगत में भगवान आके लीला करते हैं तो किस प्रकार है, जैसे काला कलर का पत्थर उसके बीच में रत्न, तो ज्यादा आकर्षण किस में दिखाई पड़ता है, काले पत्थर के बीच में रत्न तो ज्यादा आप उसमें जाता है, क्यों ध्यान उसमें ज्यादा जा रहा है, क्योंकि उसमें इतना सब काला पत्थर है लेकिन एक रत्न दिखाई दे रहा है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन वैसे भगवान आध्यात्मिक धाम में तो लीला कर ही रहे, लेकिन वो चाहते कि भौतिक जगत में भी कुछ ऐसी लीला को मैं पूरा करूं जो ज्यादा अट्रैक्टिव और भक्तों और जन लोगों को आकर्षण करके आध्यात्मिक धाम में लेकर जाऊं, इसीलिए आते हैं। ठीक है, हाँ आते ही है, आके गए हैं। तो हाँ, तो जैसे हम वैसे हम अपने साथ तुलना नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ, पानी एक बार पी लेते तो फिर बोलेंगे कल तो आप पानी पिए थे आज क्यों पी रहे, नहीं ना ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान हमेशा इच्छा करते और इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान का इच्छा जब जब बात करना है तो आके जाते हैं। हाँ इच्छा माध्यम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।